कॉलेज में मैं उन दिनों मुझे ऐसा एक्सपीरियंस था कॉलेज से निकलना जीवे से सामने मेट्रो सिनेमा हुआ करता था, लिबर्टी सिनेमा हुआ करता, तो हम लोग चोरी चोरी पिक्चर देखने भाग जाया करते थे। तो एक दो बार क्या हुआ कि टिकट नहीं मिली, हाउसफुल था, तो कुछ ब्लैक मार्केटियर्स घूमते रहते हैं कि एक डेढ़ का दो, डेढ़ का दो, डेढ़ का दो। तो इससे मुझे एक फिल्म बनाने का आइडिया हुआ कि फिल्म की टिकटों की ब्लैक मार्केट पर एक पिक्चर बनाई जाए। नतीजा काला बाजार।
खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ
काला बाजार में मेरा एक असिस्टेंट था अमरजीत।
हाँ हाँ।
मुझसे पहले वो चेतन भाई जी का असिस्टेंट था। असल में मुझे ऐसा लगता था कि इसको डायरेक्शन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो रुचि है, इसका जो रुझाव है, ये पब्लिसिटी की तरफ था, बहुत था। तो मैं चाहता था कि हमारी कंपनी का पब्लिसिस्ट हो अमरजीत, है आजकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है और अभी भी हमारी पब्लिसिटी करता है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे डायरेक्टर बनाओ, कुछ करो। तो फिर मैंने उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी, हम दोनों, उसमें देव भाई ने डबल रोल किया था। नंदा थी, साधना थी, और हमारी कंपनी में जयदेव जी थे जो की अली अकबर के साथ आए थे, बाद में एसटी बर्मन के असिस्टेंट हो गए। उनको पहली बार उसमें ब्रेक दिया गया था। उसके बाद फिर एक छोटी सी फिल्म कॉमेडी मैंने बनाई थी, तेरे घर के सामने।
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बताऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
इसके बाद ज्वेल थी भाई ना?
नहीं, ज्वेल थी उससे पहले गाइड। गाइड क्या है कि अमेरिकन बहुत फेमस राइटर थी पर्ल बाक, जिसने गुड अर्थ लिखी थी। वो हिंदुस्तान में आए थे कुछ को प्रोडक्शन करने के लिए और देव भाई से उसकी मुलाकात हुई। उसने आर के नारायण की नॉवल पढ़ी द गाइड, तो वो उसको बनाना चाहती थी। लेकिन उनका जो डायरेक्टर था टेड डेनियलेव्स्की, उसने जो स्क्रिप्ट बनाई वो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नाकाबिल थी। मुझे ऐसा लगा कि वेस्टर्न ऑडियंस के लिए शायद ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान में वो चल नहीं सकती। तो इसलिए हमने क्या किया, देव भाई से कहा कि पहले आप अंग्रेजी वर्जन बना के इनको जाने दीजिए, फिर हम नए सिरे से एक नई कहानी लिखेंगे और उसको अपने हिंदुस्तानी ढंग से, अपने ढंग से उसको फिल्माएंगे। बर्मन साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाने बनाए थे और शैलेंद्र जो कि हमारी कंपनी में इससे पहले लिरिक्स नहीं लिखते थे, वो अचानक एक दिन आए देव भाई के पास, कहने लगे कि ये गाइड मैंने नॉवल पढ़ी हुई है और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मेरे अलावा इसमें कोई लिरिक्स लिखेगा नहीं, देव भाई कुछ कीजिए, मैं इसमें लिखूंगा ही लिखूंगा। तो नतीजा हुआ कि उसी रात को देव भाई के घर में सिटिंग हो गई, बर्मन साहब बैठ गए हारमोनियम लेकर, पंचम भी था, जयदेव जी भी बैठे हुए थे, हम थे, देव भाई थे, और बैठे बैठा एक गाना बन गया।
दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए।
इसके बाद हमारी कंपनी में बहुत एक नई बात हुई, वो ये कि देव भाई को शौक हुआ कि मैं एक्टिंग करते 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 बहुत हुआ, अब मैं डायरेक्शन करना चाहता
हूँ।
तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी प्रेम गुजारी।
भूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती।
प्रेम पुजारी ने एक नई बात, ये हमने एक और नए लिरिक राइटर को, नीरज को ब्रेक दिया था,
हिंदी के मशहूर कवि।
कवि
बिल्कुल
प्रेम पुजारी। फिर उसने मेरी तेरे मेरे सपने में भी लिरिक्स लिखे और उसके बाद मेरी तीसरी फिल्म छुपा रुस्तम में भी। अच्छा, छुपा रुस्तम में एक और मैंने शोशा किया, एक दो गाने मैंने खुद ही लिख डाले।
वाकई?
हाँ, नीरज जी थे नहीं, वो अपने गाँव गए हुए थे, तो दादा बर्मन ने एक दिन रात को मुझे फोन किया कि मेरी एक धुन तैयार है, आके सुनो। तो मैंने सुनी, वो सारी रात मेरे दिमाग में गूंजती रही। सुबह जब उठा तो कुछ बोल मुझे सूझ गए, तो मैंने दादा से कहा कि देखिए दादा ये कुछ फिट बैठते हैं, तो उन्होंने गा के देखा तो उसमें बिल्कुल फिट ही बैठ गए। अच्छा, वो पिक्चर में गाना भी मैंने ही गाया था।
अच्छा,
जो ना जो मैं होता एक टूटा तारा तेरी रातों का।
कमाल है, बचपन से जानते हैं तुम्हें, इसके बाद हर बार कोई नई बात सुनने को मिलती है। हमें ये आज तक नहीं मालूम हुआ कि गाने लिखे, हमें ये नहीं मालूम हुआ कि गाना गाया।
बस क्या है यार, मैं खुद समझता हूँ कि मुझे वैसे कोई काम धंधा आता नहीं, लेकिन जो करने को जी करता है एक बार कर लेता हूँ। डायलॉग लिखने को जी किया तो लिख लिए, स्टोरी लिखने को जी किया तो लिख डाली, स्क्रीन प्ले लिखने को दिल किया तो कर डाला, कभी दिल किया कि एडिटिंग करें तो एडिटिंग भी कर डाली, सोचा कि प्रोडक्शन करें तो प्रोड्यूसर भी बन गए, सोचा डिस्ट्रीब्यूटर बने तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी घुस गए, सब कुछ करके देख लिया और अब सन्यासी बन के बैठ गए।
इसमें कोई शक नहीं है, सन्यासी बने बैठे देख के जरा तुम्हारा सामने काफी यानी छोटा महसूस कर रहा हूँ।
मजा ही मजा है
बिल्कुल।
बीच में छुपा रुस्तम से पहले मैं तुम बताऊँ, हाँ। ये भाई की दूसरी फिल्म जिसमें आर डी बर्मन पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर नवकेतन में आए, दम मारो दम।
हरे रामा हरे कृष्णा।
दादा बर्मन उन दिनों जरा उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने देव से कहा कि देव मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब ये पंचम भी तैयार हो गया है, इसको ले जाओ जरा इसको ट्राई करो। तो पंचम ने जम के म्यूजिक दिया उसमें, और देव भाई ने भी जम के वो फिल्म जाके नेपाल में बनाई, और उसमें जीनत अमान को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बड़ी स्टार बन गई आज।
बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ा खूबसूरत म्यूजिक था, और वाकई नवकेतन की शान थी वो फिल्म भी।
छुपा रुस्तम के साथ साथ एक और फिल्म बनती रही थी, राज खोसला फिर बना रहे थे शरीफ बदमाश, और उसके बाद देव भाई ने फिर एक फिल्म बनाई हीरा पन्ना, और उसके बाद देव भाई इश्क 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 में बिजी हो गए, और चूंकि वो खुद डायरेक्टर थे इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत करता रहा। मैंने एक फिल्म बनाई चोर चोर जिसमें गाने नहीं थे,
बड़ा अफसोस था मुझे।
अरे उन दिनों म्यूजिशियंस की स्ट्राइक चल रही थी, और बजाय इसके कि इंतजार करूं कब स्ट्राइक टूटे, मैंने कहा छोटी सी फिल्म है जल्दी से खत्म कर डालो। और उसके बाद एक फिल्म बनाई जान हाजिर है, जो मैंने डायरेक्ट नहीं की थी, प्रोड्यूस की थी, अपने एक असिस्टेंट को, एक असिस्टेंट को ब्रेक दिया था चोर चोर में, और एक असिस्टेंट को ब्रेक दिया जान हाजिर है। और जान हाजिर में बहुत से नए सिंगर्स को, नए राइटर को, नए लिरिक राइटर को, नए डायरेक्टर को, हर नए स्टार्स को ब्रेक दिया। दिलराज कौर उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी,
हिट हुआ था गाना सावन आया।
उसके बाद तो तुम्हें मालूम ही है अभी हाल में पिक्चर रिलीज हुई और अभी भी चल रही है
जाने मन,
जाने मन, क्योंकि 25 साल हो गए नवकेतन के, और चूंकि नवकेतन शुरू की थी चेतन भाई जी ने, और बीच में वो रुख बदल के चले गए थे अलग नवकेतन से होके, उन्होंने अपनी हिमालय फिल्म खोल ली थी, और 25 साल हुए तो फिर दोनों भाई बैठे, उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनाई जाए दोबारा।
बहुत खूब।
और मैं भी उन दिनों बंबई को छोड़ के, अपनी फिल्म लाइन को छोड़ के पुणे चला गया हुआ था, आश्रम में रहता था। तो एक दिन देव भाई आए, कहने लगे देखो 25 साल हो गए, एक चेतन भाई जी पिक्चर बना रहे, एक तुम बनाओ। नतीजा ये हुआ कि उधर जाने मन बनी और इधर बुलेट।
देखो ये क्या है जिस पे नाम तेरा लिखा है, अरे देखो ये क्या है जिस पे नाम तेरा लिखा है।
आज की इस बातचीत से एक बात तो बड़ी खूबसूरती से समझ में आई, वो ये कि 25 वर्ष में नवकेतन ने 25 फिल्में बनाई, नवकेतन के 25वें वर्ष में बुलेट 25वीं सालगिरह की 25वीं पेशकश।
बुलेट,
अब बुलेट के बारे में भी तो कुछ बताओ।
देखो भाई विजय, अब देखो इतनी हमने बातें की, और ये छोटा रिकॉर्ड तुम बना रहे हो इसलिए कि लोग इसको सुन के बड़ा रिकॉर्ड सुने।
बिल्कुल
है, और बड़ा रिकॉर्ड है बुलेट के बारे में, बुलेट के गाने हैं, बुलेट के डायलॉग हैं। अगर हम सारी बुलेट की बकबक यहीं कर देंगे तो बड़ा रिकॉर्ड सुनने का लोगों को मौका कैसे मिलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी बकवास बंद करें और अपने सुनने वालों से कहें कि ये छोटा रिकॉर्ड निकाल के अलग करें और बड़ा रिकॉर्ड अपने स्टीरियो के ऊपर लगाएं और सुनें।